सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था, जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू strengthening cooperation within the BRICS framework. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे चार महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आंकते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खासतौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले, उस के जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है लेकिन वो भी मेंबर के लिए उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल-पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खासतौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है या यूएई है या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है। और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है। तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की, जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलरिटी की, कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है। उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहां ब्रिक्स की, उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में, वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी चीन भी एक ब्रिक्स का देश है, उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहां पे नहीं आ पाए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स के देश जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है
जी।
और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर, उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं, उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है, उससे काफी जो है साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और कल भी इसके बारे में जो है ब्रिक्स एट 20 के बारे में एक सम्मेलन होगा, उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश, वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी, वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है और पूरा जो मल्टीलैटरल सिस्टम है जो अभी, क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है और बहुत सी संस्थाएं हैं, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, तो उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं।
जी, भारत ने तो पहले से कहा है और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है
जी।
वो ग्लोबल साउथ के देश है, वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर, उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर एक मत होकर कुछ बात करते हैं तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए और बाकी जो देश हैं इजिप्ट रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
जी,
वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है। तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भूराजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायोलेटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं। तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो, ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि इसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे यह है कि उनसे क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, और जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारे जो और संस्थाएं भी हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे WTO वगैरह हो, तो सब जगह पे ब्रिक्स के देश क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहाँ पे अगर इन सब बातों के बारे में, खासतौर से जो इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस के सुधार के बारे में कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
गुलशन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
जी शुक्रिया।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में